प्यारे विद्यार्थियों, गुड मॉर्निंग। हमने 16वें अध्याय में जैविक संसाधनों में पशु संसाधन और वन संसाधनों के बारे में अध्ययन किया है। अब इससे पूर्व अपना बिंदु था भारत में वन संसाधनों का वर्गीकरण, यानी वनों को भारतीय प्राकृतिक वनस्पति को कितने वर्गों में बांटा गया। 6 वर्गों में था कि उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, दूसरा मानसूनी वन, तीसरा उष्णकटिबंधीय वन, चौथा मरुस्थलीय वन, पांचवा पर्वतीय वन और छठा दलदलीय वन। इसके बाद अध्याय 16 का नाम है जैविक और अजैविक संसाधन। तो हम अब अजैविक संसाधनों की ओर बढ़ रहे हैं। अजैविक संसाधनों में जल संसाधन जो है, मतलब जल, भारत में जल संसाधन की उपलब्धता, इसके उपयोग, जल लिए स्रोत, इन सभी का अध्ययन करेंगे। जल ही जीवन है, ये हमने सुना है, पढ़ा है। जल है तो कल है, इस प्रकार की बातें, पर्यावरण के प्रति चेतना, या जो ये प्राकृतिक संसाधन है अजैविक संसाधन, तो इनके सदुपयोग के बारे में हमें इस प्रकार के जो वाक्य है वो एक प्रेरणा देते हैं और जन जागृति उत्पन्न करते हैं कि जल है तो कल है, जल ही जीवन है, और जल को हमें भगवान का ही रूप मानकर इसकी पूजा अर्चना करनी चाहिए, और जल को मतलब अनायास या जानबूझकर, जलीय जितने भी स्रोत है, चाहे वो धरातलीय जलीय स्रोत है या भूमिगत जलीय स्रोत है, उनको हमें दूषित नहीं करना चाहिए। मानव जल का उपयोग तो मतलब अपने पेयजल में, दैनिक कार्यों में, निर्माण कार्यों में, सिंचाई कार्यों में, उद्योगों में, सभी प्रकार के कार्यों में जल का उपयोग तो करता ही करता है। जल एक महत्वपूर्ण संसाधन है अजैविक संसाधनों में, और मतलब भारत में मानसून भी जल प्राप्ति का जो मुख्य स्रोत है वो है वर्षा। जल प्राप्ति का मुख्य स्रोत वर्षा है, और वर्षा से धरातलीय और भूमिगत जल के रूप में दो प्रकार से जल प्राप्त होता है। भारत में मुख्यतः दक्षिण पश्चिमी मानसून जो आता है जून से सितंबर तक, 3 से 4 महीने तक भारत में रहता है, और इससे जो वर्षा होती है वो भारत की अधिकांश सभी राज्यों में, ये मानसून अधिक समय तक पूरे भारतवर्ष में रहता है। और इस प्रकार का जो मानसून है उसे दक्षिणी पश्चिमी मानसून कहते हैं, और इसके आवागमन का जो समय अवधि है वो जून में भारत के केरल राज्य में प्रवेश करता है, और जून से लेकर सितंबर माह तक भारत के संपूर्ण राज्यों में वर्षा करता है। राज्यों के विभिन्न भागों में वर्षा होती है इस मानसून के माध्यम से, और इस मानसून का नाम है दक्षिणी पश्चिमी मानसून। और जल एक चक्रीय संसाधन है जो पृथ्वी पर प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। पृथ्वी का लगभग 71% धरातल पानी से ढका हुआ है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। अर्थात पृथ्वी को नीला ग्रह की जो संज्ञा दी गई है वो इसलिए कि पृथ्वी पर 71% 71% पानी है, और इसमें से शेष मतलब जो जल है वो 70% लवणीय जल कह सकते हैं, खारा जल कह सकते हैं, या समुद्री पानी कह सकते हैं, या उसका उतना उपयोग नहीं होता है। मात्र 1% पानी का ही चक्रीय जल, एक मैंने अभी आपको बताया जल एक चक्रीय संसाधन है, सर्किल के माध्यम से धरातल, धरातल से वापस वाष्पीकरण की माध्यम से अंतरिक्ष में ननी ननी बूंदे संघनित होकर बादल का निर्माण करती है, बादल से फिर पुनः वर्षा होती है, वर्षा से फिर इस धरती पर पेयजल स्रोत या एक शुद्ध जल जिसका ज़्यादातर सभी सजीव उपयोग करते हैं वो 1% है। और जल चक्रीय संसाधन है इसलिए ये समाप्त भी नहीं होता है, इसका एक सर्किल बना है, एक चक्र बना हुआ होता है, पुनः इसके वो पूर्ति होती रहती है। ज़्यादातर जो है भारत में भारत की विशालता और स्थलाकृतिक भिन्नता के कारण जल की उपलब्धता में अत्यधिक काफ़ी अंतर्दृष्टि गोचर होते हैं। भारत में जल के दो स्रोत हैं, धरातलीय जल और भूमिगत जल। प्यारे विद्यार्थियों, नाम से स्पष्ट है, ऐसे जलीय स्रोत या ऐसा जल जो धरातल पर उपलब्ध होता है, नदी के माध्यम से, नहर के माध्यम से, बांध के माध्यम से, तालाब, बावड़ी, ये सारे के सारे विशेष रूप से धरातल, मतलब झील हुई, तालाब हुई, बांध हुई, नदियां हुई, ये सब बावड़ी इत्यादि, तो फिर भी वो उसमें आ जाएंगे, आपके भूमिगत जल में आ जाएंगे। धरातलीय जल में, जो धरातलीय जल का जो मूल स्रोत है वो है वर्षा। वर्षा से ही धरातल पर जल की पूर्ति होती है। धरातलीय जल को अगर यदि हम परिभाषा दें तो वह जल जो वर्षा द्वारा नदियों, झीलों, तालाबों, बांधों से प्राप्त होता है, धरातलीय जल कहलाता है। भारत के जल स्रोतों में नदियां सर्वप्रमुख है, नदियां सर्वप्रमुख है। सबसे अधिक धरातलीय जल में नदियों से ही जल प्राप्त होता है। और भारत की जो गंगा नदी है, इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर। यमुना 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। ब्रह्मपुत्र, सिंधु नदी, नर्मदा, ताप्ती, महानदी, गोदावरी नदी, कृष्णा, कावेरी, ये नदियाँ दक्षिण भारत की नदियाँ। कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी कहते हैं। ये भारत में जल स्रोत का सर्वप्रमुख जो साधन है वो है नदियाँ। और धरातलीय जल का सर्वाधिक उपयोग कृषि कार्यों में किया जाता है, इसके बाद में घरेलू कार्यों में, और फिर औद्योगिक कार्यों में। यदि परसेंटेज की मात्रा से बताया जाए कि 90% धरातलीय जल का उपयोग कृषि कार्यों में होता है, 9% उपयोग घरेलू कार्यों में होता है, और 2% धरातलीय जल का उपयोग औद्योगिक कार्यों में होता है। इसके बाद भूमिगत जल संसाधनों में, भूमिगत जल की जो प्राप्ति है वो हमें, जैसे आपने और छोटी कक्षाओं में भूगोल विषय के अंतर्गत पढ़ा होगा कि धरातल में 3 प्रकार की चट्टानें पाई जाती है। पृथ्वी के गर्भ में प्राथमिक शैल जिसे बोलते हैं, या औषधि चट्टानें, फिर आग्नेय चट्टानें, और तीसरी जो है उसको रूपांतरित शैल या रूपांतरित चट्टानें या कायांतरित चट्टानें भी कहते हैं। तो बात की जा रही थी हमारे भारत के अंदर जल संसाधनों की। जल संसाधन एक अजैविक संसाधन है, और जल भारत में 71% पृथ्वी के ऊपर, पूरी पृथ्वी के ऊपर, मतलब 71% भाग जल से ढका हुआ है। इसलिए पृथ्वी ग्रह को भी नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। और मतलब भूमिगत जल जो है, दो जलीय स्रोत है बड़े, धरातलीय जलीय स्रोत और भूमिगत जलीय स्रोत, जिसमें भूमिगत जलीय स्रोत है। भूमिगत जल की प्राप्ति सामान्यतः आग्नेय व कायांतरित कठोर शैलों से नहीं होती है, इसलिए भूमिगत जल की मात्रा अलग अलग प्रदेशों अनुसार भिन्न भिन्न होती है, किसी राज्य में अधिक, किसी में कम। ये राजस्थान में भूमिगत जलीय स्रोतों में, जो भूमिगत जलीय स्रोतों के प्रमुख जो स्रोत है वो है नलकूप, कुएं, ये प्रमुख है, और इनकी अधिक सिंचाई वगैरह के रूप में इनका उपयोग किया जाता है। भूमिगत जल का भी सर्वाधिक उपयोग 92% कृषि कार्यों में, और 3% घरेलू कार्यों में, और 5% औद्योगिक कार्यों में भूमिगत जल का उपयोग किया जाता है। अब बात आती है, जब भूमिगत जल से सिंचाई की जाती है तो सिंचाई क्या है? वर्षा की कमी या अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति की क्रिया को सिंचाई कहते हैं। वापस से सुनिएगा, वर्षा की कमी हो और मौसम शुष्क हो और खेतों में कृत्रिम ढंग से जल की आपूर्ति करने की क्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। जो साधन सिंचाई के लिए खेतों में जल उपलब्ध करवाते हैं उन्हें सिंचाई के साधन कहते हैं। जो साधन सिंचाई के लिए खेतों में जल उपलब्ध करवाते हैं उन्हें सिंचाई के साधन कहते हैं। जैसे नदियाँ, नहरें, झीलें, तालाब, कुएं, नलकूप, ये सभी सिंचाई के साधन हैं। पहले मैंने आपको सिंचाई की परिभाषा बताई, वर्षा की कमी या अभाव के कारण शुष्क मौसम में खेतों में कृत्रिम ढंग से पानी की पूर्ति करना या जल की आपूर्ति की क्रिया को ही सिंचाई कहते हैं। अपने शब्दों में इस परिभाषा को अच्छे से याद रखना, बिल्कुल सिंपल है, सरल है, साधारण है, सुस्पष्ट है। ऐसे साधन, अब अगली सिंचाई के साधनों की परिभाषा, जो साधन सिंचाई के लिए खेतों में जल उपलब्ध करवाते हैं, जो साधन सिंचाई के लिए खेतों में जल उपलब्ध करवाते हैं उन्हें सिंचाई के साधन कहते हैं। सिंचाई के साधनों में नदियां, नहरें, यही तो जल उपलब्ध करवाती है खेतों में, नदियां, नहरें, झीले, तालाब, कुएं, नलकूप। और अगला प्रश्न बनेगा कि जिन उपकरणों द्वारा नदियों, नहरों, झीलों, बांधों, तालाबों, नलकूपों, कुओं आदि से पानी बाहर निकालकर सिंचाई की जाती है सिंचाई के उपकरण कहलाते हैं। जैसे पुराने ज़माने में चड़स हुआ करते थे जिनके माध्यम से कुओं से पानी निकाला जाता था एक साथ, फिर उसके बाद में डीजल पंप आए, उसके बाद में ये मोटर आई जिसे विद्युत पंप की संज्ञा दी गई है। इनसे पानी को इन स्रोतों से बाहर निकाला जाता है, कुओं से, बांधों से, नहरों से, और फिर खेतों में सिंचाई की जाती है। तो जिन उपकरणों द्वारा नहरों, झीलों, बांधों, नदियों, तालाबों, नलकूपों, कुओं से पानी बाहर निकाला जाता है उन उपकरणों को सिंचाई के उपकरण कहेंगे। सिंचाई के उपकरणों में चड़स, डीजल पंप, विद्युत पंप इत्यादि। इसके बाद में उत्तरी भारत में नहरों, कुओं और नलकूपों से तथा दक्षिण भारत में तालाब और नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। विशेष रूप से उत्तरी भारत के जो राज्य है उनमें सिंचाई के जो स्रोत है वो है नहरें, कुएं और नलकूप। और दक्षिणी भारत में सिंचाई के जो प्रमुख साधन है वो है तालाब और नहरों द्वारा सिंचाई की जाती है। जल की उपलब्धता का हस, यानी जल की जो कमी आने का कारण जो प्रमुख है वो मतलब जल में अशुद्धियों के मिलने से शुद्ध जल की कमी। शुद्ध जल की परिभाषा क्या होगी? अवांछित पदार्थों से रहित, रहित यानी बिना, अवांछित जिनको हम नहीं चाहते उन पदार्थों के बिना जल जो होगा वो शुद्ध जल कहलाएगा। अवांछित पदार्थों से रहित जल, अवांछित पदार्थों से रहित जल शुद्ध जल कहलाता है। और अशुद्ध जल की परिभाषा बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनना। विषीले पदार्थ हो, सूक्ष्म जीव हो, रासायनिक पदार्थ हो, अन्य अपशिष्ट पदार्थ जो उद्योगों से, फैक्ट्रियों से, कल कारखानों से निकलते हैं वो निकलकर जल में मिल जाए, जिसकी वजह से जल की गुणवत्ता में ह्रास होता है, जल की गुणवत्ता में कमी आती है, और इस प्रकार के जल को अशुद्ध जल कहते हैं। यदि इस परिभाषा को हम बदल कर कहें तो जल के भौतिक व रासायनिक गुणों में अवांछित परिवर्तन को जल प्रदूषण कहते हैं। यदि ये भी याद नहीं रहे आपको तो जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है और इस जल को जल प्रदूषण कहते हैं, इस क्रिया को जल प्रदूषण कहते हैं। जल में अवांछित पदार्थों के मिलने से जल प्रदूषित हो जाता है और इस क्रिया को जल प्रदूषण कहते हैं, जल का प्रदूषण कहते हैं। अब बात की जाए, प्रदूषण की बात आई तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, पाठ्य पुस्तक में भी ये बिंदु है, भारत की वो दो नदियाँ जो अत्यधिक प्रदूषित नदियों का रूप ले चुकी है, यानी भारत की उन दो नदियों के नाम जो सर्वाधिक प्रदूषित है। तो मैंने अभी काफ़ी नदियों के नाम लिए थे, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ये सभी नदियाँ। तो उनमें गंगा और यमुना दो नदियाँ भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदियों में से प्रमुख हैं।